नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय है पोषण सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए मिलकर काम करने वाली प्रगतिशील और टिकाऊ रणनीतियों पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है।
अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ।
गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। तिरुचि में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एआईएडीएमके नेताओं के साथ भी चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को 4 महीने के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफएस के अंतर्गत वेतन सीमा को बदलने पर विचार करने का निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों से ईपीएफओ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि वेतन सीमा में कोई बदलाव न होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे से बाहर हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक यात्रा दिशा निर्देश जारी कर भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के कार्यकारी निदेशक फाती बिरोल से मुलाकात की। इस मुलाकात में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान यूएई थल सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हलामी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने का वादा किया है। रॉड्रिक्स को उनके भाई और नेशनल असेंबली के नेता जॉर्ज रॉड्रिक्स ने शपथ दिलाई। रॉड्रिक्स 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं और देश की तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था और इसके खुफिया विभाग की देखरेख करती थीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ने की संभावना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अमरीका के सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के परिणामों पर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए गुतेरेस ने कहा कि वेनेजुएला में जो स्थिति बन रही है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में डकवर्थ लुई नियम के आधार पर 8 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।